नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई के उपयोग में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च का आयोजन किया जा रहा है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से आज एक वन्य जीव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक है। चार दिवसीय इस आयोजन में दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति प्रदर्शित की जाएगी। इस आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। 7,000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि और 400 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, क्वांटम संचार और 6G जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है नवाचार से रूपांतरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ। यह समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
नए कर सुधारों में हुई जीएसटी दरों में कटौती से दिल्ली के उपभोक्ता और कारोबारी दोनों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई कर संरचना के तहत 7,500 रुपए से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर में कमी से होटलों में रहने वालों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंट्स, कैफे और केटरिंग सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसोई के सामानों पर भी जीएसटी घटाया है। जीएसटी 2.0 के तहत इन वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस कदम से मेन्यू कीमतों में स्थिरता आएगी और छोटे तथा मध्यम स्तर के भोजनालयों की लाभप्रदता में सुधार होगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से दिल्ली के आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी सुधार की संभावना है, जिससे होटलों और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। जूते, चप्पल, फर्नीचर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वस्तुओं पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। इस कमी से इन वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नए कर सुधार न केवल परिवारों के दैनिक खर्च को कम करेंगे बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सशक्त बनाएंगे।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यान्वयन के लिए विश्वास और सुरक्षा जरूरी है। नई दिल्ली में आज ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेस्टिवल इंडिया को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी, आदतों में परिवर्तन आएगा, नए स्वास्थ्य समाधान निकलेंगे और शिक्षा तक अधिक पहुंच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शामिल होने से दुनिया के हर कोने में प्रत्येक नागरिक पर इसका असर होगा। डॉ जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रबंधन के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तकनीक को अपनाने वालों के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, एकता मार्च का आयोजन और जागरूकता रैली। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में एकता और देशभक्ति की भावना जागृत करना है। पहले चरण के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां माई भारत पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण के तहत द्वीप समूह के तीनों जिलों में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं आयोजित होंगी। स्कूल और कॉलेज के छात्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों को इस मार्च में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने बताया कि अप्रैल 2025 से अब तक एनपीए खातों से 27.16 करोड़ रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। मुख्य सचिव ने बैंक को एनपीए खाताधारकों से ऋण वसूली के प्रयासों को और तेज करने की सलाह दी ताकि एनपीए प्रतिशत को निर्धारित मानदंडों के भीतर लाया जा सके। वन्यजीव सप्ताह मनाए जाने के सिलसिले में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से आज एक वन्यजीव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सेलुलर जेल से शुरू हुई और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण परिसर में पहुंचकर सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षक डॉ एस दिनेश कन्नन ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। पशु संरक्षण और मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर प्रभावशाली संदेशों के बैनर और पोस्टर लेकर 100 से अधिक प्रतिभागियों ने रैली में भाग लिया। कैम्बल बे में सहायक आयुक्त कार्यालय के सामने आज आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगों में 7 महीने से वेतन न मिलना और उनकी यूनिफॉर्म का इंसेंटिव न मिलना था। सहायक आयुक्त डॉ केशव नरेंद्र सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। अंडमान लोक निर्माण विभाग 12 अक्टूबर को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस उपलक्ष्य में विभाग ने कल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से मुख्य अभियंता कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन विभाग के मुख्य अभियंता टी के प्रजीत रेख ने किया। इस अवसर पर एपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। समग्र शिक्षा के अंतर्गत डिगलीपुर के ब्लॉक परियोजना कार्यालय ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय लामिया बे में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर कल एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता, शिक्षकों, छात्रों, एसएमसी सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच सेरेब्रल पाल्सी की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम 3 सत्रों में आयोजित किया गया। श्रोत विशेषज्ञ एन रिया नंदन, विशेष शिक्षक विश्वजीत दास और बीआरपी राखी कबीराज ने उपस्थित लोगों को इस दिवस के महत्व और इससे संबंधित पहलुओं के बारे में बताया। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम में 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्रिजगंज स्थित चिंते लॉन्ग रेंज में कल और 13 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। स्थानीय लोगों, वाहनों और पशुओं को इस दौरान क्षेत्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई के उपयोग में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च का आयोजन किया जा रहा है और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से आज एक वन्यजीव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।